Hare Krishna. Following is a lecture by His Grace Rukmini Krishna Prabhuji on the occasion of Dikshas of the devotees in April. And previous that, the bhajan by His Grace Bimala Prasad Prabhuji, that is Ibar Karuna Karo.
Bye. महाराज परमहंस परिवर्तिकाचार्य अष्टोत्तम देशी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज
जय हो।
उद्देश्य ये है
लेकिन सारे कार्यों में क्या मिलता है? दुख। कितनी अजीब सी बात है।
लक्ष्य होता है आनंद और रिजल्ट होता है दुख। तो कुछ लोग तो बार बार ट्राई करते रहते हैं कि अब ये नया तरीका अपनाए आनंद पाने का, ये नया तरीका अपनाए, वो नया तरीका अपनाए, एक अल्टीमेटली रिजल्ट सबका दुखी होगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सोचेगा कि तो बहुत कैसी ये सृष्टि की रचना की गई है कि कोशिश करके आनंद पाने की और मिलता है, प्रॉमिसिंग लगता है अब तो मिल जाएगा ना, नहीं मिलता है, तो ऐसा क्यों है और कैसे इस समस्या का समाधान किया जाए। जैसे कल श्लोक चर्चा की गई थी, तस्मात् गुरुं प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तमा। तो जो जिज्ञासु व्यक्ति हो जाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे श्रेयस आनंद उत्तम आनंद कैसे मिलेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, गुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। आपको ये पूछ सकता है गुरु की शरण ग्रहण करने से आनंद कैसे मिलेगा, गुरु की शरण ग्रहण से आनंद कैसे मिलता है, क्या विचार है आपका, क्यों मिलेगा गुरु की शरण ग्रहण करते आनंद। तो सही रास्ता वो क्या है, तो भगवान के अंदर जाने से आनंद क्यों मिलेगा, तो क्या हो गया सच्चिदानंद से, तो मुझे क्या, तो क्या अभी भी आप एग्जैक्ट आंसर पे नहीं पहुंचे, कृष्ण ही आनंद है लेकिन हम उनके अंश हैं, उनके बिना सुख कैसे पा सकते हैं, अंश का क्या कर्तव्य होता है, सेवा। तो गुरु वो माध्यम है जो हमारी इस भोगने की प्रवृत्ति को सेवा की प्रवृत्ति में बदल सकते हैं। तो जैसे ही हम सेवा की प्रवृत्ति में आते हैं हमें आनंद मिलता है, बस छोटी सा विज्ञान में समझ में आना चाहिए, जितना हम भोग करने का प्रयास कर रहे हैं उतने दुखी रहेंगे। गुरु एक वो माध्यम है जो इस भोगने की प्रवृत्ति को सेवा में बदलते हैं, बस ऐसी सेवा की प्रवृत्ति आएगी हम हमारी वास्तविक स्थिति में आ जाएंगे। कोई जीवे स्वर में हो कृष्ण नित्य दास, कृष्ण के दास को बनाएंगे गुरु हमें, तो हम आनंद में रहेंगे। तो हम लोग सेवा में क्यों नहीं जुड़ पाते, क्योंकि ये हमारा झूठा अहंकार है। झूठे अहंकार के कारण कि मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, मैं ही शरीर हूं, मैं इस भौतिक जगत का हूं, इस झूठे अहंकार के कारण हम दुख पाते हैं। तो गुरु वो माध्यम है, श्री भक्ति से हम राज करते हैं, गुरु वो व्यक्ति है जो हमारे इस झूठे अहंकार को काटते हैं। गुरु हमारे झूठे अहंकार को काटते हैं। इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का जो कनेक्शन है, जो लिंक है, वो हम समझ लीजिए कि एक झूठे अहंकार के धागे से लटके हो, जैसे झूठा अहंकार का धागा काट दिया जाएगा हम वापस भगवान धाम चले जाएंगे। तो ये जो कार्य है गुरु करते हैं और ये बड़ा पेनफुल ऑपरेशन होता है, क्योंकि कई कई जन्मों का युगों का यह संबंध हमारा झूठा अहंकार है, तो उसको गुरु काटते हैं। तो इसलिए इसकी आवश्यकता है, जब तक हम गुरु की शरण में नहीं जाएंगे ये झूठा अहंकार समाप्त नहीं होगा। तो इस अहंकार काटना अति आवश्यक है ना, इसीलिए अक्सर लोग दीक्षा लेने के बाद भी कई बार एक गुरु के सामने जाने से डरते हैं, क्योंकि बोला कुछ कह दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, या वैष्णव के सामने जाने से डरते हैं। और कई लोग वैष्णव कई बार बहुत सख्त भाषा यूज करते हैं, बोलते हैं कैसे वैष्णव है, क्यों नहीं सख्त भाषा बोलते हैं, क्यों वो हमारे अहंकार को काटते हैं। जैसे एक बार श्री प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, उनके परम प्रिय शिष्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, तो प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण महाराज जी अमेरिकन थे शरीर से, तो उन्होंने उनको भेजा कि जाओ मायापुर में मंदिर बनाना है जमीनपुर के बाद। अब उस समय कल्पना की थी, हम सब में से काफी लोग मायापुर में गए हुए हैं, इस समय कितनी उत्तम व्यवस्था है मायापुर में, उस समय 1970s में बिल्कुल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, बिल्कुल खाली जमीन और सब कसम मुसलमानों के पास ही जमीन। अब वहां जाकर ये जमीन लेना, वो भी कोई भारतीय नहीं, एक अमेरिकन सन्यासी गए, सोचो जरा कितना मुश्किल का काम है ना। तो मान लीजिए गोस्वामी महाराज गए हुए,
और उस समय कोई मोबाइल फोन नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है कि रोज बात हो रही है, अप टू डेट हो रहे हैं। कभी कोई ट्रंक कॉल आती थी, कभी कोई टेलीग्राम किया, बहुत समय के बाद वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती थी। तो दमाल किशन महाराज को गए काफी समय बीत गया, महीने से ऊपर हो गए, कोई खबर नहीं होगी कहां गए। तो प्रभुपाद एक बार रात को बैठे हैं, 2:30 बजे का समय है, प्रभुपाद उनके बारे में चिंता कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, बहुत ग्रंथ का अनुवाद कर रहे हैं। उनको बोल रहे हैं दमाल किशन आए नहीं काफी टाइम से। तो जैसे एक शुद्ध भक्त सोचता है किसी के विषय में, जब भी कोई शुद्ध भक्त हमारे विषय में सोचेगा तो उसमें हमारा भाग्य उजागर होता है, तभी दरवाजे पे खटखट होती है और दमाल किशन महाराज अंदर आते हैं। प्रभुपाद को दंड प्रणाम करते हैं, प्रणाम मंत्र बोलते हैं और फिर प्रभुपाद को कुछ कागज में पहुंचा कर घबराते हैं और देन प्रभुपाद द लैंड इज योर्स, जमीन आपकी है। इतना स्ट्रगल करके आए और महीनों के स्ट्रगल के बाद जमीन मिल गई। तो बात ने क्या बोला, ओके गोल्ड टेकर्स कुछ नहीं, ये नहीं उसको गले लगा लिया बहुत अच्छा है, तो आप सोच सकते हैं कैसे गुरु है, ओके गोल्ड टेकर्स। तो गुरु जानते हैं कि शिष्य की कब प्रशंसा करनी है, कब प्रशंसा नहीं करनी, कितनी प्रशंसा करनी है, कब उसको डांटना है ना। तो गुरु का मुख्य कर्तव्य है कि उसका झूठा अहंकार ना हो। गुरु हमारे परम हितेशी है, सुहृद असली हितेशी है। गुरु और वैष्णव हमारे असली हितेशी है। हमें यही नहीं देखना चाहिए कि वो कड़वे वाक्य बोल रहे हैं, वो हमारी भलाई के लिए बोल रहे हैं, हमारे भले के लिए। तो देखिए कह रहे पॉइंट प्रेसिडेंट से जब गुरु कृष्णा में जाते हैं तो मेरे झूठे अहंकार को काटते हैं। और जब गुरु के मुख से कुछ भी वाक्य निकले, जैसे हम गुरु पूजा करते हैं, गुरु पद्मा वाक्य चित्र देख कर लिया ले लिया, गुरु से मुख से जो वाक्य निकलते हैं, जो हमें गुरु से इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, वो हमारे लिए एक रस्सी का काम करते हैं जिससे हम इस अंतिम भूमि रूपी भौतिक संसार से निकल सकते हैं। इस भौतिक संसार से छुटकारा पाना अति दुर्लभ है, अत्यंत दुष्कर, ये सरल नहीं है, क्योंकि प्रति पल हम कुछ ना कुछ पाप कर रहे हैं, हर क्षण हमसे पाप हो रहा है और पाप का रिएक्शन है। तो इस एक्शन रिएक्शन के जंजाल से निकल पाना आसान है, ये अंधा कुआं है, अंधा कुआं, धसते चले जा रहे हैं, धसते ही चले जा रहे हैं, धसते चले जा रहे हैं। तो ऐसे अंधे कुएं में एक ही उम्मीद है, एक ही आशा है, वो है गुरु के आदेश। जैसे हम गुरु के आदेशों को पकड़ते हैं, उसका पालन प्रारंभ करते हैं, हम इस संसार से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर हमें गुरु के द्वारा कोई व्यक्तिगत निर्देश मिलते हैं तो ये हमारा परम सौभाग्य है। तो उस निर्देशों को शिष्य को अपना जीवन बना लेना चाहिए कि मेरा जीवन है, क्योंकि इसी का पालन करके मैं इस भौतिक संसार से छुटकारा पा सकता हूं। तो गुरु के मुख से कोई भी वाक्य निकला उनको हम बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, बहुत गंभीरता से हर एक वाक्य। जैसे मैंने क्या हुआ, 1975 की बात है, प्रभुपाल ने डीबीटी में और बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स में एक दिव्य स्पर्धा कॉम्पिटिशन होता था। प्रभुपाल लिखते थे, डीबीटी छपाई करती थी और बुक डिस्ट्रीब्यूटर में किताबों को बांट थे। प्रभुपाल कहते हैं मैं चैलेंज करता हूँ, तो देखते हैं आप मुझे कैसे बीट कर सकते, मैं लिखता जाऊंगा आप छपाई कौन लिखते, कौन जीतते। निश्चित रूप से प्रभुपाल को हरा नहीं पाया। प्रभुपाल ने चैतन्य चरिता पर लिख दिया ग्रंथ, उसकी 17 वॉल्यूम हो गए और डीबीटी वाले उसको प्रिंट नहीं कर पाए और प्रभुपाल खूब प्रेशर आ गए, करो प्रिंट करो। तो उस समय डीबीटी के मैनेजर थे रामेश्वर स्वामी जी और दादा वाला, उन्होंने काफी नई नई मशीन्स दी, लॉस एंजलिस में डीबीटी प्रेस अपडेट कर दिया। उससे पहले क्या होता था कि एक किताब छापने में 4 महीने लगते, तो इन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कराया और अब क्या हुआ कि एक किताब एक महीने में छपता है। तो बड़े खुश हुए और उनको सूचना मिले थी प्रभुपाद आने ही वाले हैं, तो जून 1975 की बात है। बड़े खुश होकर प्रभुपाद को बताएंगे कि एक महीने में किताब छप जाएगी। तो प्रभुपाद आते हैं और अगले दिन मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं, रामेश्वर प्रभु भी है, राधा वल्लभ प्रभु भी है। प्रभुपाद चलते चलते बोलते हैं कि चैतन्य चैतन्य की 17 किताबें इकट्ठी हो गई हैं, अभी तक छपाई नहीं हुई, हमारे पूरे आंदोलन के लिए बड़े दुख की बात है, सब लोग बोले हैं दुख की बात है, वास्तव में बड़ी गलत बात है। रामेश्वर गौरवी स्वामी सबको लगा था आपने कुछ किया था प्रभुपाद से ना, ये वाता से एक नया टेक्नोलॉजी आया जल्दी हो जाएगा, इससे पहले कि वो कह सके प्रभुपाद ने कहा कि अब हमें इन 17 किताबों को 2 महीने में छाप देना है। रामेश्वर जी बोला कि पता नहीं क्या समझ गया, गलत समझ गया, क्या हो गया, वो सबको पीछे करके प्रभुपाद के पास आए। यहाँ रामेश्वर जी का नाम होता है प्रभुपाद, हमारे पास सब नया टेक्नोलॉजी आ गया है और हमने जो पहले 4 महीने में किताब छपती थी अब 1 महीने में किताब छप जाएगी, 1 महीने में किताब, बड़े उत्साह से होता है प्रभुपाद, खुश होते हैं प्रभुपाद, बोला 1 महीने में 1 किताब, तो 1 साल से भी ऊपर हो गया, और आप प्रभुपाद 1 साल से लगभग हो गया, बोला नो 2 महीने में सब छप जाना चाहिए। तो उन सबको ऐसा लगा रामेश्वर क्या बोल रहे हैं, क्या है 4 महीने पहले एक किताब छपती थी, किसी ढंग से मैंने 1 महीने में 1 कर दिया, अभी कह रहे 2 महीने में 17 किताब, उनके मुख से निकल गया इम्पॉसिबल, एकदम तुरंत दिखाना है इम्पॉसिबल। प्रभुपाद ने चलना एकदम रुक गए और अपने उनके पास स्टिक थी, जोर से उन्होंने से डाला, बोला इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ द फोर्स, ये काम देखा। उस समय रामेश्वर जी को यह लगा कि मेरा पूरा का पूरा आध्यात्मिक जो जीवन है खत्म हो गया, उनको तुरंत यह आभास हो गया कि मैंने ये वर्ड जो यूज कर लिया है इम्पॉसिबल, इसका मतलब मुझे गुरु की कृपा पर विश्वास नहीं। सारे के सारे शिष्य उनको देखने लगे क्या बात कर रहे हो, कैसे ये इम्पॉसिबल है, क्या हुआ कि बेचारे सोचते ही रह गए है? और बाकी लोग तो आगे चले गए मॉर्निंग वॉक में, रामेश्वर और जो राधा मतलब सोचते रह गए, बोले चलो वापिस चलो टाइम नहीं, और जाके उन्होंने जप अप शुरू किया, और जप कर रहे हैं, जप करते करते सोच रहे हैं 2 महीने में कैसे होगा, 2 महीने में कैसे होगा, और जब तक जप समाप्त हुआ तो उनको पूरा कन्विक्शन हो गया कि हाँ हम 2 महीने में कार्य कर सकते हैं। तो उनको ऐसा लगा जैसे उनको एक बहुत ही जिसे कहते हैं दिव्य शक्ति मिल गई उनको, तो बड़े साहित्य लोगों प्रभुपाद के पास गए, प्रभुपाद यस इट कैन बी डन, प्रभुपाद बोला ठीक है, बोले प्रभुपाद कुछ शर्तें हैं, बोले क्या शर्तें हैं, प्रभुपाद आपको यहां कुछ समय हमें देना पड़ेगा, कुछ बंगाली एडिटर्स हैं उनको आपको टाइम देना पड़ेगा तभी हो पाएगा, प्रभुपाद बोला नो प्रॉब्लम आई एम हियर टू असिस्ट यू। उसके बाद आप सब पढ़ सकते हैं प्रभुपाद लीलामृत में वर्णन आता है, बीबीटी के उन लोगों ने अपना रात दिन एक कर दिया, लोग सो नहीं रहे हैं वहीं बैठे बैठे छाप रहे हैं, पेंटर्स डिजाइन कर रहे हैं, पेंटिंग करते करते वहीं रात को सो गए, सुबह वहीं मंगल आरती किया, जप किया, फिर से लग गए, दिन में 20-22 घंटे वो सेवा कर रहे हैं, और रात दिन एक करके उन सब ने 2 महीने के अंदर 17 किताबें छाप। तो ये है गुरु के वाक्यों में शक्ति। वहां पे हिजोली ने सत्स्वरूप महाराज बहुत सुंदर वाक्य लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं The disciples changed their life. Disciples changed their lives to implement the orders of their spiritual master. उन्होंने अपने जीवन को बदल दिया गुरु के आज्ञा का पालन करने के लिए। और हम लोग क्या करते हैं? We change Guru's orders to suit our life. हम गुरु के आदेशों को बदलते हैं। भाई ये नहीं होता हमसे। ये क्या बोल रहे हैं? थोड़ा तंग कम करो, थोड़ा ये कम करो, थोड़ा और कम करो, हम अपने जीवन को नहीं बदलेंगे, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, हम वैसे हम नहीं करेंगे, क्या बात करें दोनों कैसे हम वैसे के वैसे रहेंगे, कुछ हो सकता है तो बताओ। लेकिन ये असली शिष्य होता है वो अपने जीवन शैली को बदल देगा, गुरु की अगर पालन होना चाहिए है ना। जैसे हम में से कुछ लोगों को आदत हो सकती है कि गाड़ी चलाते चलाते हम जब कर रहे हैं, कि गाड़ी में बैठे हुए जब कर रहे हैं, कुछ लोग काउंटर पे जब कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। गुरु की आज्ञा है कि 16 माला बहुत अच्छे ढंग से सुबह सुबह उठ कर करना है। मैं कैसे करूंगा, मेरे को नौकरी है, बच्चे हैं, बिजनेस है, हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ द फूल्स, कुछ भी असंभव नहीं है। चैतन्य चैतन्य कृष्ण सविरा जी क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कृपा से अंधा देख सकता है, गूंगा बोल सकता है, बहरा सुन सकता है, लंगड़ा नहीं, लंगड़ा पहाड़ पार कर सकता है। हमारे गुरु महाराज अक्सर ही बोल रहे हैं कि लंगड़ा पहाड़ पार कर सकता है, अगर इस पर आप डाउट करोगे तो फिर आप गए, संशय आत्मा विनश्य ही, डाउट करोगे तो गए। पूरा फेथ होना चाहिए कि गुरु की कृपा पे कुछ भी संभव है, मैं कुछ नहीं हूं, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, गुरु की कृपा में बहुत शक्ति, बहुत शक्ति, उससे पूरा विश्वास होना चाहिए। भागवत में वर्णन आता है कि अगर हम निरंतर गुरु की उच्च स्थिति का स्मरण करें, यही कार्य करे शिष्य हमेशा कि गुरु कितने महान है, उनकी उपलब्धियों का स्मरण करें, उनका चिंतन करें, तो निश्चित रूप से विकार के विकार शिष्य को भी भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाए। शुद्ध भक्ति गुणगान में इतनी शक्ति है, केवल शुद्ध हम गुरु के उपलब्धियों का स्मरण नहीं करें, उनकी उच्च स्थिति का हम स्मरण करें, हमारे में कोई शक्ति नहीं है, गुरु के कृपा में गुरु परंपरा में बहुत शक्ति है, पूरा पावर हाउस है। तो हम इस कृपा का पूरा लाभ तब उठा सकते हैं जब हम पूर्ण रूप से शरणागत होंगे, पूर्ण रूप से। तो शिष्य को जब गुरु के सामने जाते हैं उसे अपने आप को सबसे उत्तम भक्त को सबसे उत्तम मूर्ख मानना चाहिए, सबसे उत्तम मूर्ख, उसको यह समझना चाहिए कि गुरु इज द ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, महान से भी महान है और मैं अधम से भी अधम। जैसे कि ये सामने ट्यूबलाइट्स लगी हुई है, इस ट्यूबलाइट में प्रकाश कैसे आता है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं तभी करंट फ्लो करता है ना। तो अगर हम गुरु को पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव और अपने को बिल्कुल नेगेटिव कि मैं कुछ नहीं हूं, तभी करंट फ्लो करेगा और तभी हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा। ऐसा बोलेंगे नहीं गुरु भी महान है तो मैं भी कुछ कम नहीं हूं, तो गुरु भी पॉजिटिव मैं भी पॉजिटिव, करंट नहीं आएगा, या फिर मैं पॉजिटिव गुरु नेगेटिव, अभी करंट नहीं आएगा, या तो आजकल कलयुग में सब बेकार है, मैं भी नेगेटिव गुरु भी गए। तो गुरु इज अ ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, मैं लोअर देन द लोएस्ट, जब ये भावना हम अपने अंदर लाएंगे तब हम देखेंगे हमें असली कृष्ण भक्ति का आनंद मिलेगा, वो है गुरु की शरण प्राप्त करना। इस ढंग से हमें प्रयास करना चाहिए। और जो शिष्य है उसका गुरु को, गुरु के जो आदेश जैसे हम पहले बोल सके हैं, उसको अपनी आत्मा समझना चाहिए। श्री जी गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु एक आत्मा है शिष्य की, कैसे कि अभी तक हम सब अंधकार में सो रहे थे, अपने इस शरीर को अपने खुद समझ रहे थे कि मैं बिजनेसमैन हूं, मैं सर्विस मैन हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं महिला हूं, मैं पुरुष हूं, वगैरह 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 है ना। तो शास्त्र में बताया गया है कि पूरा का पूरा जो मटीरियल वर्ल्ड है सपने के समान है। आप लोग सिनेमा देखते हैं ना, देखते हैं सिनेमा पूरे एकदम कट ट्रेड हो गया सिनेमा नहीं देखते देखते थे पहले मुझे पहले सिनेमा देखते थे तो सिनेमा चल रही है ना, प्रेम हो रहा है, ट्रेजेडी हो रही है, लड़ाई हो रहा है, हम तो बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं, वहां कॉमेडी का सीन सुना था हम हंस रहे हैं, वहां कोई हो गया तो हम भी रोना शुरू कर दिया, वहां फाइटिंग करने का हमने करना शुरू कर दिया, तो पूरा अनुभव करते हैं। और तीन घंटे का चार घंटे का सिनेमा समाप्त हो जाता है, बाहर आते हैं धूप में, बसों का हॉर्न चल रहा है, लू चल रही है, सारी का सारा सपना टूट जाता है कि वो हीरो था, हीरोइन था, बोले सब खत्म हो जाता है, बस में धक्के खाओ या गाड़ी में धक्के खाओ, है ना। उसी ढंग से अभी हमारे जीवन जो चल रहा है वो सिनेमा के समान है, वो तीन घंटे का सिनेमा है, 70-80 साल का सिनेमा मैक्सिमम, तो इसमें ट्रेजिडीज भी हैं, सुख भी हैं, दुख भी हैं, गाने भी हैं, सब कुछ है इसमें, बिल्कुल पूरा कंप्लीट फैमिली स्टोरी है इसमें ना। तो हम उसी में उछल कूद रहे हैं, अपने अपने मत रखे हुए, गुरु आगे हमें उठाते हैं, ठो 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 ठो। तो क्या होता है जब गुरु से दीक्षा लेते हैं तब हमारी रियल लाइफ शुरू होती है, इससे पहले क्या चल रही है, रील लाइफ, रील लाइफ समझते हैं ना, सिनेमा की लाइफ चल रही है, अब हमारी रियल लाइफ शुरू होती है। तो रियल लाइफ में ये मतलब नहीं है कि हम सब कुछ घर बार छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल मन में संदेह नहीं होना चाहिए कि रियल लाइफ का मतलब ये हुआ कि घर छोड़ देंगे, नहीं, वहीं हम घर में रहेंगे, वहीं व्यवसाय करेंगे, बस चेतना शुरू होगी, कि जीवन का लक्ष्य मालूम चलेगा कि जो भी वस्तु में हमारे आसपास है इसको किस तरीके से भगवान की सेवा में लगाना, बस और कुछ नहीं है। कहीं बताया गया कि एक विधि है, हर चीज की एक विधि है, एक विज्ञान है, तो उस विधि को कैसे समझना है, तत् विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, कि तत्वदर्शी गुरु के पास जाकर उस विधि को सीखना है। क्या विधि, कि जो भी इस भौतिक संसार में जितना भी सामान है, जितनी भी सामग्री है, सो कैसे भगवान की सेवा में लगा। जब तक ये नहीं था तो सारे के सारे सामग्री को हम अपनी सेवा में लगा रहे थे, अपने भोग के लिए, तो वो सेवा वो रियल लाइफ चल रहा था। रियल लाइफ क्या है कि सारी सामग्री को कृष्ण की सेवा में लगा। इस ढंग से शिष्य को अपने आप को समझना चाहिए कि गुरु ने मुझे वास्तविक जीवन दिया है। गुरु और शिष्य का संबंध बहुत ही घनिष्ठ संबंध, गुरु और कृष्ण का संबंध प्रेममय संबंध होना चाहिए, फॉर्मेलिटी वाला औपचारिकता का संबंध नहीं होना चाहिए। हृदय हृदय को लेते हैं, हार्ट टू हार्ट रिलेशन होना चाहिए, तभी हम प्रगति कर पाएंगे। औपचारिकता नहीं, ना ही ऑयल रेफरेंस, ऑयल रेफरेंस मतलब बस दूर से देखा प्रणाम कर दिया कि हम डरते हैं, हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं, रिस्पेक्ट से काम नहीं चलेगा, प्रेम करते हैं। हम बोलते हैं ना जीवन कलश क्या है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम तब मिलेगा जब गुरु से प्रेम होगा। प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रभुपाद जी के लिए अपने जीवन को लगा दिया, समय कम है, इतनी स्टोरीज है, इतनी स्टोरीज है, क्या क्या प्रभुपाद जी के शिष्यों ने नहीं किया। प्रभुपाद लीला में पढ़ेंगे आप, वो पढ़ेंगे, और हम अपने आप को देखते हैं कि हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। तो प्रभुपाद के शिष्यों ने इतने बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस कैसे दिए, क्योंकि प्रभुपाद से प्रेम करते। और आज प्रभुपाद जी के शिष्य लगातार इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभुपाद जी 108 सेंटर स्थापित करके गए, हम लगभग 500 सेंटर थे। वो क्यों, क्योंकि उनका उनके हृदय में प्रभुपाद के प्रति प्रेम नहीं थी। तो हमने भी इस प्रेम को विकसित करना है। जब तक प्रेम नहीं होगा, ये भक्ति है, ये प्रेममय सेवा है, प्रेममय सेवा हमने करनी है। तो कृष्ण प्रेम का अर्थ है गुरु के प्रति प्रेम हमें विकसित करना पड़ेगा। तो गुरु के प्रति जो प्रेम है, ये कोई सेंटिमेंटल प्रेम नहीं होना चाहिए, गुरु का चेहरा अच्छा लगता है बस, इसलिए प्रेम कर रहे हैं। गुरु के या भक्तों का दर्शन हम आंखों से नहीं करते, किससे करते हैं, कानों से। गुरु और भक्तों के दर्शन हमें कानों से करने चाहिए। कानों से दर्शन का क्या अर्थ हुआ, उनके आदेशों को सुनते और उनके आदेशों को जीवन सकते। तो गुरु का संग हम दो रूप से कर सकते हैं, एक है बापू संग और दूसरा है वाणी का संग। बापू का संग हुआ माना कि फिजिकल तरीके से जब गुरु उपस्थित हैं हम उनकी सेवा कर रहे हैं, तो हमें कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए गुरु महाराज की बापू सेवा करने। हमें कोई भी अवसर नहीं छोड़ना चाहिए कि जब हमें गुरु की बापू सेवा का अवसर मिले। बापू सेवा का अर्थ समझे, पूछ लीजिए बीच में। बापू का मतलब होता है शरीर। तो गुरु जब तक इस संसार में हमारे पास हैं इस शरीर के रूप में, तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। जब भी मौका मिले हमें गुरु के दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए और उनसे सुनना चाहिए। जब भी मौका मिले, जब भी मौका मिले, हम मान चले गुरु महाराज जी का प्रवचन है इस मंदिर में या राधा पार्वती मंदिर में, तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए जाके हम उस प्रवचन को सुने, उनके दर्शन करें और उनसे पास जाके उनको कुछ उनके संपर्क जाए, उनसे बोलें कि आप कुछ मुझे सेवा बताइए, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं। क्योंकि बहुत दुख की बात है कि गुरु महाराज जितने प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, अब आगे 30-40 साल मैक्सिमम और हमारे बीच में रहेंगे इस शरीर के, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे। तो जितना ज्यादा हम उनका संग लेंगे, जितना ज्यादा तो हम उनकी भावनाओं को समझ पाएंगे, और तभी हम वही जो हमने पल के साथ बिताए हैं वो हमें आगे जाके शक्ति देंगे कि हम इस मोमेंट में रह सकें, आगे सेवा कर सकें। इसमें पूरा हमें कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाहिए, तभी तो प्रेम विकसित होगा। कोई दीक्षा कोई फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, क्या नहीं ना, अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, असली आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसलिए हमें करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि थोड़ा सा जीवन शैली में परिवर्तन करना पड़ेगा, प्रायोरिटीज को चेंज होती है। तो इस ढंग से शिष्य को गुरु के साथ प्रेम विकसित करना चाहिए, और श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि क्या सिम्टम है कि एक शिष्य ने प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण की है, क्या सिम्टम है कि देख के पता चल जाए कि हाँ ये शिष्य है प्रमाणिक गुरु है। हो सकता है किसी ने पढ़ा भगवद गीता में तात्पर्य में लिखा प्रभुपाद, आप सबने भगवद गीता पढ़ी हुई, कितने लोगों ने भगवद गीता पढ़ी हुई, बिल्कुल हृदय से सच सच, इसका मतलब अनुरोध है, इसका मतलब अटल है कितना तो किसी को याद है ये वाक्य, किसी को याद है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आप बताएं एक सिम्टम जो है शिष्य का कि उसने प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण की है कि विल नेवर टॉक है, दैट ही विल नेवर टॉक नॉनसेंस, ही विल नेवर टॉक नॉनसेंस, बेकार की बात नहीं करेगा। तो जैसे कभी बात हो रही थी कि शिष्य को अमोघ वाक होना चाहिए, याद है आपको भक्ति टोली ने बताया था अमोघ वाक मतलब गलत बात नहीं करेगा, प्रजल्पा, प्रजल्पा मतलब संसारिक बात, क्रिकेट का क्या स्कोर चल रहा है आज, पॉलिटिक्स आज इलेक्शन थे कौन जीतेगा कितने मत से जीतेगा, इन सब बातों से हमें कोई मतलब नहीं, ये बेकार की बात है, कृष्ण कथा केवल करना है, रामे कथा नहीं करना। तो अगर ऐसा करें इसका हमने सही रूप से दीक्षा ग्रहण नहीं की, सही रूप से हमने शरण ग्रहण नहीं की, तो हमें कभी भी इस तरह की बातों से हमें हमेशा बचना चाहिए। तो अब प्रश्न ये उठता है कि गुरु को हम कैसे उनकी आज्ञा का पालन करें, गुरु के साथ कैसे संबंध स्थापित करें। कि गुरु महाराज जी के हजारों शिष्य हैं और विश्व भर में वो भ्रमण करते हैं और कभी कभी दिल्ली में दो तीन महीने में आए फिर चले गए, फिर आए फिर चले गए, और हर बार हम उनसे मिल भी नहीं पाए, मिले भी तो केवल दर्शन में कोई बातचीत नहीं हुई, तो हमें पर्सनल इंस्ट्रक्शन नहीं मिले। इस तरह के प्रबंध में हम सारी बातें थियोरेटिकल रह जाती हैं, तो कैसे हम गुरु महाराज के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं, कैसे हम उनके नजदीक जा सकते हैं, बताना चाहिए कैसे। और ईमेल से भी संपर्क कर सकते हैं, एक ईमेल का जो संपर्क है बड़ा डिस्टेंट वो है, उसमें कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं है, फिर भी हम ईमेल से संपर्क कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है, ईमेल से भी हम कर सकते हैं कि महाराज कई बार इतने बिजी रहते हैं कि ईमेल्स भी लेट होते हैं, साथ में ईमेल्स में हम पूरी बातें उस समय साइट में स्थिति है उसको पूरा एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं। हाँ। से गुरु की शरण ग्रहण करके मतलब कृष्ण की शरण ग्रहण कर रहे हैं, इसी ढंग से हम गुरु की शरण ग्रहण कर सकते हैं, वैष्णव की शरण ग्रहण कर रहे हैं। तो हमें गुरु से पूछना चाहिए, निश्चित रूप से ये कार्य करनी चाहिए कि हम प्रतिदिन, क्योंकि निश्चित रूप से हम ध्यान रखिए कि जो भक्ति है एक विज्ञान है, भक्ति में मन मर्जी नहीं चलेगी, फ्रीलांसर नहीं है, मेरा मन कर रहा है, मन में आया चले गए वृंदावन, मन में आया परिक्रमा कर ली, मन में आया उछल दिए भूख दिए, मन में आया सो गए, मन में आया कोई पुस्तक उठा ली, सब आध्यात्मिक पुस्तकें कोई भी पढ़ लो कुछ भी कर लो, कभी भी उठ लो कभी भी सो लो, अब तो दीक्षा हो गई बस खत्म, ये नहीं। एट एवरी स्टेप वी शुड बी गाइडेड, क्यों आप बोलेंगे तो बहुत बड़ा भारी सीने में लग रहा है, तो हमारा खत्म हो गया जीवन है, क्या है ये तो फायदा नहीं, ऐसे फंस गए, एवरी स्टेप वी शुड बी गाइडेड, तो बहुत बड़ा बोझा दिमाग में पड़ गया, कुछ भी नहीं कर सकते अपने आप। देखिए भी समझने का प्रयास कीजिए कि अगर हम अपने हिसाब से अभी तक चल रहे हैं ना, अभी तक अपने हिसाब से तो चल रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं तो सुखी है क्या है हम लोग, है ना दुखी है ना, हम सब क्योंकि अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो शरण ग्रहण करने का मतलब क्या है? जब तुम अपने मन के हिसाब से चलेंगे, मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, शत्रु की एडवाइस लेके चलते रहोगे तो उसका भी सुखी हो सकता है कोई व्यक्ति? मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, उसकी एडवाइस में चलेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। तो अपनी इस दीक्षा का अर्थ है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया गुरु से कि मैं आज जीवन आपका दास हूं, आपकी सेवा करूंगा, जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा। तो हमें फिर गुरु के आदेशों के साथ जीवन जीना चाहिए। तो जैसे गुरु के प्रतिनिधि हमें बताएं वैसे चलना चाहिए। तो हर छोटी बात हम गुरु महाराज से नहीं पूछ सकते, तो गुरु से हमें पूछना चाहिए कि हम किसकी शरण ग्रहण करें। तो गुरु अपॉइंट करेंगे कि आप इनसे आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, इनसे आप इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं। उसके बाद फिर हमें अपना बुद्धि का प्रयोग नहीं करना, अपने आप को सबसे बड़ा मूर्ख समझते हुए जो हमें आदेश मिले उसका हम पालन करते हैं। आप देखेंगे कि ऐसा करते हुए हम बहुत सुखी होते हैं। कि जब छोटा बच्चा माँ की गोद में होता है वो अपनी इंटेलिजेंस यूज नहीं करता कि पंखे को धीरे करो, एसी ऑन करो, ऊपर छतरी दो, कंबल डालो, नहीं, वो चुपचाप होता है तो माँ अपने आप सब कुछ अरेंज कर देते हैं। इज कंप्लीट शेल्टर। तो बक्सीनाथ महाराज कहते हैं सरेंडर मीन्स पीसफुल लाइफ। जीवन में शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं तो शरणागत कर दो, खत्म। जब तक ये नहीं करेंगे, नहीं नहीं मैं बहुत महान हूं, कैसे शरणागत करूं, क्यों करूं, तो ये प्रश्न चलते रहेंगे और आप चिंतित रहेंगे, दुखी रहेंगे। तो हर कदम पे हमें गाइडेंस चाहिए। क्यों गाइडेंस चाहिए? ताकि हम अपने मन के हिसाब से ना चले, क्योंकि मन ही हमारा आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। मन चाहता है कि हम इस भौतिक जगत में रहें, सड़ते रहें। तो इसलिए गुरु की शरण ग्रहण करने का अर्थ है कि गुरु के प्रतिनिधियों की हम शरण ग्रहण करें। आप सोचेंगे कुछ में से काम से कुछ लोग सोचेंगे ये तो बड़ा डिस्टेंस हो गया गुरु जी से, गुरु महाराज को कैसे मालूम चलेगा कि मैं अच्छी सेवा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, ये शिक्षा गुरु जो है बताएंगे नहीं बताएंगे, कैसा होगा ये सब कुछ, कुछ कोई संदेश हो सकता था चल रहा हूं, होता है ना, तो कैसे? तो बक्सीनाथ महाराज कहते थे कि हमें कभी भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इतनी अच्छी सेवा करनी चाहिए कि भगवान हमें देखने आए। तो ये बात गुरु पे अप्लाई होती है, हम इतनी अच्छी सेवा करेंगे, इतने अच्छे आज्ञा का पालन करेंगे कि निश्चित रूप से गुरु महाराज हमें देखने आएंगे, हमारी सेवा का आदेश करेंगे। तो ये हमें प्रयास नहीं करना चाहिए कि हमें मेरी गिफ्ट डिवोटी मेरा गुरु महाराज से सीधा संपर्क करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने क्या प्रिंसिपल दिया है? दास दासानो दास, दासों के दासों का दास। इस ढंग से मिलकर हमें अपने आप को शिष्य बनाना है। शिष्य का अर्थ है डिसाइपल, डिसाइपल का अर्थ है डिसिप्लिन लाइफ। डिसिप्लिन लाइफ में मन मर्जी नहीं चलती। ऑफिस में हम जाते हैं डिसिप्लिन में रहते नहीं रहते, ये समय आने का ये समय जाने का, बोला नहीं मेरा मन नहीं मानता, नहीं करना पड़ेगा। ऑफिस में डिसिप्लिन है, इसी ढंग से डिसाइपल है। अगर आप शिष्य हैं मीन्स डिसाइपल, यानी कि डिसिप्लिन लाइफ। डिसिप्लिन लाइफ मीन्स जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसका पालन कीजिए, बस। मन तो नहीं मानेगा, मन कभी नहीं मानेगा, क्योंकि आप खुद ही देखेंगे जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे हैं आप आगे अपनी प्रगति करेंगे और आपके जीवन में हम सबके जीवन में आनंद आएगा। ओके, एक्चुअली समय बहुत कम लग रहा है तो मुझे थोड़ा रिशअप करना पड़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि हम शिक्षा गुरु की शरण ग्रहण कर लें, उनके आगे का पालन करें, बाकी भी हमारे गुरु भाई हैं वैष्णव हैं, क्योंकि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हम क्या मांग रहे हैं भगवान से? तो सेवा कभी अकेले हो सकती है? नहीं हो सकती। तो सेवा करने के लिए हमें संग चाहिए, संग में रहकर ही, हम भक्तों के संग में रहकर ही सेवा कर सकते हैं। तो भक्तों का संग हम सही ढंग से करें ये हमें सीखना होगा। बुरा मानने की बात नहीं है, हमें से अधिकतर लोगों को भक्तों का संग करना नहीं आता। संग करने का अर्थ ये नहीं कि हम इकट्ठे बैठ गए तो संग हो गए। प्रभुपाद कहते हैं अगर इकट्ठे बैठने संग है तो कोई मच्छर व्यास आसन में बैठा है तो वो संग नहीं ले रहा भक्त का। तो मच्छर यहां बैठ गए बोले तो मच्छर कितना भाग्यशाली, उसको संग मिल रहा है गुरु जी का नहीं। तो इकट्ठे बैठना इकट्ठे रहना संग नहीं है, संग करना हमें सीखना होगा। तो संग कैसे करना चाहिए ये हमें आना चाहिए, कि जब भक्तों से मिलते हैं तो कैसे मिलना चाहिए। कैसे संग करना चाहिए, इन सब बातों को बोलते हैं वैष्णव सदाचार। इसलिए वैष्णव सदाचार को सीखना अति आवश्यक है। जब तक हम वैष्णव सदाचार को नहीं पालन करेंगे हम सही ढंग से संग कर नहीं सकते, और जब तक हम संग सही ढंग से नहीं करेंगे हम गुरु की सेवा कर ही नहीं सकते। वैष्णव एटिकेट्स को जानना बहुत जरूरी है। वैसे भी आप देखिए हम सब लोग दीक्षा ले रहे हैं, दीक्षा लेने का क्या अर्थ है, क्यों ले रहे हैं हम दीक्षा बताइए, हम दीक्षा क्यों ले रहे हैं? بہت سے وہ ہے مالا چاہتے. تو سب سے پہلے تو بالکل اپنے مسجد میں ڈالیے سدا چار ہے, سدا اس کا آچرن کرنا ہی کرنا ہے. میرے جیون میں کچھ بھی پرستھتیاں آ جائے اس کو میں نے نہیں چھوڑنا. کتنی مالا؟ سولہ مالا. نہیں ابھی آج کل کا پریوار میں شادی تھی, دوبارہ کر لی, چار کل کروں گا میں گرو کے سامنے. پرتیجا رہتے ہیں کہ سولہ مالا پرتی دن کریں گے تو پرتی دن ایک ہفتے کا کانٹیکٹ نہیں, باقی ہفتے میں بھی کر لیں گے, مہینے میں بھی کر لیں گے. پرتی دن ہمیں سولہ مالا کرنی کر پھر سدا چار ہو. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ چار نیموں کا سختی سے پالن. کون کون سے چار نیم ہیں؟ کسی رنگ کا مانساہار نہیں کرنا, کوئی رنگ کا لفظ نہیں کھانا, کوئی نشہ نہیں کرنا, چائے کافی نہیں, گٹکا نہیں, پان مسالہ والا نہیں, کوئی جوا نہیں کھیلنا اور یا بھی چار نہیں کرنا. تو ان چار نیموں کا ہمیں سختی سے پالن کرنا ہے. تو گیملنگ کا ارتھ ہے کہ ہمیں جھوٹ بھی نہیں بولنا. اب آپ لوگ بزنس کرتے ہیں, بزنس بنا جھوٹ کے چلتا ہے, اور سروس میں بھی کئی بار تھوڑا بہت جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو ٹھیک ہے, ایسی پرستھتیوں میں ہم بات کرتے ہیں پوتا کے کارپر میں لمیٹڈ جھوٹ بول سکتے ہیں, لیکن اس میں آپ نے چیتنا کو لفٹ نہیں کرنا کہ ہم بولے ہی جھوٹ. بس سچ کبھی کبھی بولیں, ہمیشہ جھوٹ بولیں, اکثر بات یہ حالت ہوتی ہے. تو کبھی کبھی سچ بولے پتا نہیں چلتا سچ ہے کہ جھوٹ ہے. اس کی جو نارمل ستھی وہ جھوٹ ہی بولتے ہیں. ایسا نہیں ہونا, اگر ہم ایسے ہیں تو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. ہم اندر سے اپنے آپ کو جان دیں. جھوٹ تو بالکل نہیں بولنا. اگر بزنس وغیرہ میں جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے کہ کچھ ہمیں مارجن لینا ہے تو وہ لے کر ہم تھوڑا سا جھوٹ بول سکتے ہیں. یعنی کسی کو ہم دھوکھا ہی دیتے رہے, جمع خوری کرتے رہے, اس ڈر سے اپنے جیون جیئیں گے تو ہمارا من کبھی شانت نہیں رہے. تو بڑا کلین لائف ہمیں جینے کا پریاس کرنا چاہیے, اور خاص کر جب ویشنو کے ساتھ تو بالکل جھوٹ نہیں بول. یہ جھوٹ ویشنو کے لیے نہیں. جب ہم ویشنو سنگھ میں آتے ہیں, بھکتوں کے سنگھ میں آتے ہیں, پھر کرتے ہیں بالکل جھوٹ نہ بولیں. گرو سے اور ویشنو سے کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا. اگر کوئی ویکتی گرو اور ویشنو سے بھی جھوٹ بول لے گا تو وہ تو پھر سیدھا نرک کام ہے, نرک میں جانا ہے. پلیز اس بات کا خیال رکھیں, کیونکہ ہم لوگوں کی عادت بہت خراب ہے. ہم چھوٹے چھوٹے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ بابو جی آپ نے ٹائم دیا تھا 9 بجے آنے کا, ابھی آ رہا ہوں, بس ابھی آ رہا ہوں, ابھی 5 منٹ پہنچ پاؤں, ابھی گھر سے نکلے بھی نہیں, کم سے کم 1 گھنٹے کا راستہ ہے. عادت پڑی ہوئی ہے, پر ٹریفک جام کا راستے میں یہ ہو گیا, گاڑی خراب ہو گئی, چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہی بولتے رہتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ بھی ویشنو کے ساتھ نہ ہو, عادت ڈالنی شروع ہو. پھر کیا ہوگا ایک بار, یہ تو اپنے ساتھ کے بھکت ہیں, ساتھ میں دیکھا ہوئی تھی, یہ تو سوچتے آتا ہے ان کے ساتھ بول دیتے ہیں جھوٹ کیا ہے. پر وہ جھوٹ نہیں بولوں گا تو برا مان جائیں گے, لڑائی ہو جائے گی, یہ ہوگا نہیں. کبھی ویشنو سے ایسے جھوٹ بولیں گے نا تو ایک دن کیا ہوگا, گرو مہاراج سے بھی جھوٹ بول دیں. اور پھر چھوٹے چھوٹے نہیں بہت بڑا جھوٹ بول دیں. مالا ہو رہی ہے, ہو رہی ہے, چاندی پالن بڑے ہو رہے. اس استھتی میں ہم پہنچ جائیں گے چھوٹے چھوٹے جھوٹ بول دیں, بڑا جھوٹ بول دیں, اور ایسا جھوٹ بولیں گے پھر ہم کوئی نہیں بچا سکتا, کوئی بھی نہیں. ہم نشچت روپ سے سمان مہاراج کہتے ہیں کہ اگر ہم ویشنو کے بیچ میں بالکل ٹرانسپیرنٹ رہ سکے, ٹرانسپیرنٹ سمجھتے ہیں پاردرش, جو اندر ہے وہی باہر ہے, اس ڈھنگ سے ہم رہ سکے بھکتوں کے بیچ میں تو ہمارے آدھیاتمک جیون میں سفلتا گارنٹیڈ ہے. بھگوت ہم جانا گارنٹیڈ, بس اور کچھ بھی نہیں کرنا. کتنے کرپالو بن پاؤں, بس ویشنو کے بیچ میں ہم بالکل آنےسٹ ہوں, اور اسپرچل لائف میں سکسیز از گارنٹی. کبھی بھی ہم جھوٹ نہ ہوں, اس طرح سے لگ بھگ سختی سے پالن کریں. اور جو ویشنو ایٹیکیٹس ہیں اس میں طرح طرح کے نیم بتائے ہیں, یہ کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, روز اینڈ بورڈس ہیں. ان سب کا مکھیہ لکش کیا ہے, کیوں اتنے نیم بتائے گئے ہیں کہ ایسے پرنام کرنا ہے, بائے ہاتھ نکلنا چاہیے, ایسے پرساد پانا چاہیے, ٹھیک ہے, کتنا لگانا چاہیے, بارہ تیرہ بجے آئے گا, اور بہت ہی ڈالنے ہیں, ساڑھے ڈالنے ہیں, ایسے نیم کیوں, کیا اس کا ادیش ہے؟ सब नेमों का भी वो स्वामी जी कहते हैं एक ही लक्ष्य है कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा, कि हमेशा हम कृष्ण का स्मरण कर सके और कभी हम कृष्ण को ना भूल सके, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण। कि मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं कृष्ण का भक्त हूं, इसलिए कर रहा हूं फिर उनको जिस मैंने दीक्षा ग्रहण की बार बार में स्मरण आए ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। और जो वैष्णव एटिकेट्स हैं उसमें सबसे बड़ी बात की जाती है जैसे हम अपने यहां शुद्धता का ख्याल रखें, शुद्धता सफाई बाहर से भी है और अंदर से, अंदर से बाहर से मतलब है स्थूल शरीर की सफाई और अंदर का मतलब है सूक्ष्म शरीर की सफाई। तो हमें स्थूल शरीर की भी सफाई करनी है और सूक्ष्म शरीर की सफाई करनी है। स्थूल शरीर को कब कब साफ करना है, कब कब हमें स्नान करना चाहिए, स्थूल शरीर की सफाई कैसे हो सकती है, स्नान करके, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, है ना, कोई छूट नहीं दी है। तो कब का हमें स्नान करना चाहिए, आप सबने वो वैष्णव एटिकेट्स की बुक पढ़ ली है, कितने लोगों ने वैष्णव एटिकेट्स की बुक पढ़ ली है, लोगों ने पढ़ी नहीं पढ़ी आपको, ये आवश्यक है, इसको जरूर पढ़िए, बिना उसके हम नहीं, हम शिष्य बन नहीं सकते, सही संस्कृत सदाचार नहीं होगा, वो प्रैक्टिकल है क्या क्या कर रहा है, प्लीज उसको पढ़िए, माइन्यूटली पढ़िए, स्टडी कीजिए, गुरु महाराज की इच्छा है, उनकी आज्ञा है कि मैं दीक्षा उन्हीं को दूंगा जिन्होंने सब पुस्तकें पढ़ ली, बहुत समय दिया गया था, सबको पुस्तकें दी गई है ना, तो कृपया करके इसको जरूर पढ़िए, सबके पास हैं पुस्तकें, वो किनके के पास वो वैष्णव एटिकेट्स बुक नहीं है, हाँ ये भी करिए, हाँ ये वाली बुक किन के पास नहीं है, आपके पास है अनिल जी नाम, आपके पास है बुक, अरे जी और इनके पास ये नहीं है, कृपया करके ले लीजिए, रसिकानंद प्रोग्राम की हमारे से कुछ बुक्स पढ़ी है अभी भी, इसको लीजिए और इसको पढ़िए, इसमें छोटी बड़ी बात बताई गई है कि मंदिर में कैसे आना चाहिए, भक्तों के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए, जो अभक्त है उनसे कैसे बातचीत करनी चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए, छोटी बड़ी बात हमें बताई गई। तो कब का स्नान करना चाहिए, जब हम मल त्याग के आए हैं, हमने शेव किया है, कटिंग किया है, नाखून काटे हैं, या शमशान घाट से आए हैं, या फिर दिन में हम सो जाते हैं एक घंटे से ज्यादा, तब भी हमें स्नान करना चाहिए। एक बार जरूर सारा रोहित महाराज जी कहीं विदेश में थे, तो वहां कोई विदेशी मिला, बातचीत शुरू हुई, बोला कहां से, हम बोला मैं स्कॉन से, ओ स्कॉन यार इज कीप ऑन टेकिंग बाथ, ये लोग हमेशा ही नहाते रहते थे, कई बार हमारे भक्तों किराए में मकान लेते हैं तो मकान वाले परेशान रहते, कितना पानी आप पी सकते हैं, कई बार लोग परेशान रहते, सर्दी में भी बार बार नहा रहे, अक्सर लोग ये जो हम वैष्णव एटिकेट बता रहे हैं, अगर आप गांव में जाएंगे ना तो गांव में लोग इसको स्वाभाविक रूप से इसका पालन करते हैं कि शौच के बाद स्नान करते ही करते हैं, शहरों में आकर कल्चर खराब हो गया। तो ये हमें स्नान करना है और अपने आप को बहुत साफ सुथरा रखना है, और मन की सफाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हरे कृष्ण महामंत्र नियमित रूप से जप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जैसे हम प्रसाद पाते हैं, तो छोटी भी बातें हैं जल्दी हम इसको हम कवर कर लेते हैं, प्रसाद पाते हैं तो प्रसाद पाते हुए हमें कितने हाथों का प्रयोग करना चाहिए, कितने हाथों का प्रयोग करना चाहिए, एक ही हाथ का प्रयोग करना चाहिए, आदत चाहे कुछ भी खा रहे हैं दोनों हाथों का प्रयोग नहीं करना, राइट हैंड का प्रयोग करना है, लेफ्ट हैंड को फ्री रखना है, लेफ्ट हैंड को अशुद्ध माना जाता है। और जब हम प्रसाद सर्व करें तो सर्व करते हुए ख्याल रखें कि जो हमारा सर्व जिस स्पून से हम सर्व कर रहे हैं उसको हम प्लेट से टच ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति प्रसाद पा रहा है उससे वो प्लेट टूटी होगी और आपने जाकर उसको प्रसाद से टच कर दिया तो सारा का सारा जूठा होगा, फिर छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए। फिर दूसरा हमें प्रसाद पाना है कि केवल प्रसाद पाना है, केवल प्रसाद ही पाना है, प्लीज یعنی پرساد بھی پا لیتے ہیں اور باہر جا کے اور کچھ بھی پا لیتے ہیں، وشنو وشنو بولا اور کچھ بھی کھا لیتے ہیں، سموسہ رس گلا کچورے کچھ بھی بولا، وشنو سب ہردے کا سب مزہ ہمارا، ایسا نہیں کہیں نہیں کھا گیا ہے نا، بہت اچھا نہیں لگے گا کہ نا کنٹھی ڈالی ہوئی ہے اور باہر جا کے کہیں گول گپے کھا رہے ہیں، سموسہ کھا رہے ہیں، اچھا نہیں لگے گا. جیسے کوئی آرمی مین ہے الٹا سیدھا ویوہار کرے تو کیا ہے، انڈین آرمی کا کیسا ویوہار کرتا ہے، اسی ڈھنگ سے پبلک میں جا کے ہمیں کھانا نہیں چاہیے، جا کے ہم بیٹھے ہیں کہیں کھا رہے ہیں، تو آپ سوچیں گے کہیں ایسا جگہ چلیں جہاں کوئی بھکتی نہیں ہے تو کیا پرابلم ہے، کہیں بھول چلے جاتے ہیں فالو کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں ایسی جگہ چلے ہیں پھر کیا تو کھا سکتے ہیں، تب کون دیکھ رہا ہوگا ہمیں، کرشن دیکھ رہے ہیں کہاں بیٹھے ہمارے ہندو میں کرشن دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے پرومس کیا تھا اور کیا کر رہے ہیں، تو کرپیا کر کے اس آکرشن کو ایسے ہو سکتا ہے آکرشن سماپت ہو ہی گیا ہوگا، جب بھگوان کا پرساد پاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے آکرشن سماپت ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی کچھ ایسی تھوڑی موٹی ابھیلاشائیں رہ جاتی ہیں، اس کو سنتوشت کرنے کے لیے بھی آپ جیسے بڑے مندر میں گوگندا ریسٹورینٹ ہے آپ وہاں جا کے پرساد پا سکتے ہیں، کبھی کبھی باہر کھانے کا گھر میں پریوار والے بولے کہ ہمیں باہر جا کے کچھ کھلائیے تو گوگندا ریسٹورینٹ میں جا کے آپ کھا سکتے ہیں، یا آپ کے گھر میں بھی ایسی چیزیں کھا کے پا سکتے ہیں، کچھ باتوں کا خیال نہیں ہے. اس کے بعد جب ہم بھکتوں کے ساتھ سمبند کرتے ہیں تو نارد منی جی شریمد بھاگوتوں میں بتا رہے ہیں کہ کس ڈھنگ سے ہمارے بھکتوں کے ساتھ سمبند ہونا چاہیے. تین کیٹیگری کے بھکت ہوتے ہیں، کچھ بھکت ہم سے سینئر ہوں گے، کچھ بھکت ہمارے ساتھ کے ہیں اور کچھ بھکت ہمارے سے جونیئر ہوں گے. جو سینئر ہمارے سے بھکت ہوں گے ان کا ہمیں پورا آدر دینا چاہیے اور ان کو دیکھتے ہی ہمیں اتنا پسند ہونا چاہیے جیسے کہ مور ناچنا شروع کر دیتا ہے ورشا کے آنے سے، جب مور بادلوں کو دیکھتا ہے تو ناچنا شروع کر دیتا ہے، ویسے ہی ہم کسی شدھ بھکت کو دیکھیں سینئر ڈیووٹی کو دیکھیں تو ہمیں ہردے سے پرسن ہونا چاہیے اور جو ہمیں ہمارے برابر کے بھکت ہیں ان سے ہمیں مدتا کرنا چاہیے اور جو ہمارے سے جونیئر بھکت ہیں ان کے پرتی ہمیں دیا دکھانا چاہیے. ہوتا کیا ہے جو ہم اپنے سینئر بھکت کو دیکھتے ہیں تو ہم کنی کاٹتے ہیں، کہیں کوئی انسٹرکشن نہ دے دیں، کچھ پوچھ نہ دیں کہ ایسا اچھا ہے ایسا کوئی جب دھیرے دھیرے کر کے نکل گئے، اور جب برابر کا بھاگ ملتا ہے تو اسے مرتدا نہ کر کے ہم یہ دکھانے کا پریاس کریں کہ میں تم سے بہتر ہوں، میں یہ کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں، اپنا ہم گنگان کرتے رہتے ہیں، اور جو جونیئر بھکت مل جائے تو اس کو تو سمجھتے ہیں کیا ہے ڈپریشن چیز ہے، اس کو بالکل اچھے اس کا پورا شوشن کرنے کا پریاس کرتا ہے، میں سینئر ہوں میں دیکھی کے لیے تو نیا نیا آیا، اس ویوہار سے بچتے ہیں ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات ہے ہمارے بھکتی میں سب سے بڑی بات ہے وہ کیا ہے اپرادھوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اپرادھ شب کا کیا ارتھ ہے کہ جو ہمیں رادھا رانی جی سے دور لے جائے، جب ہم کچھ بھی اپرادھ کرتے ہیں تو ہم رادھا رانی کی کرپا سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر ہم مہا مایا کے اندر آ جاتے ہیں، تو اپرادھ سے ہمیں ہر سمتی میں بچنا ہے اور ویشنو اپرادھ کو بہت گھور اپرادھ ہوتا ہے. چیتنیہ مہاپرو نے کہا ہے کہ ویشنو اپرادھ کا مطلب ہے پاگل ہاتھی کے سامان، کیا کرتا ہے ہماری بھکتی لتا بیچ جو ہمیں پراپت ہوئی ہے بہت ہی کومن اوستھا میں ہے، تو ویشنو پراپت کرتے ہیں تو پاگل آتی آ کے پورے پورے اس بگیچے کو ڈھونڈ دیتا ہے، کرپیا کر کے اس ویشنو پراپت سے ہمیں بچے کتنے ڈھنگ سے ہم ویشنو پراپت کر سکتے ہیں، بتایا گیا چھ طریقے سے ہم ویشنو پراپت کرتے ہیں. سب سے پہلا طریقہ ہے کہ کسی ویشنو کو دیکھ کے ہم پرسن نہ ہوں، دیکھا وہ ہو مجھے اچھے نہیں لگتے، کل طریقہ اچھا نہیں لگ رہا یا بول چال اچھا نہیں لگتا، کچھ بھی کارن ہو سکتا ہے، ان کو دیکھ کر ہم پرسن نہ ہوں. دوسرا ان کو دیکھ کر ہم پرنام نہ کریں، برا مت مانیے ہم سب بہت سست ہیں جھکتے نہیں ہیں، کچھ اہنکار ہے کچھ سستی ہے جھکتے ہی نہیں پرنام ہی نہیں کرتے. آج کل فیشن والے دن وقت بابو جی دھنواد کیا ہے ویشنو ایڈیکیٹ نہیں ہے، ترنت پرنام کرنا چاہیے وانچا کل پتر کرپا سمجھ ہے کرنا ہے فزیکلی کرنا ہے جھکنا ہے، یہ ہمارا ایگو ختم ہوگا ہے. پربھوپا جی کے پاس ایگو کے شیشیہ ہے کہتے پربھوپا جی مجھے دکھاوا نہیں ہوتا ہے ہپوکریسی ہے دوگلا من ہے، میرے من میں اس کے پتی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے پھر میں کیوں پرنام کروں، یہ دوگلا من ہے اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ کیسے ہوگا. भगवान ने बोला कि नहीं, फिर भी करो, खावे तब भी करो, करते 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 आपकी वास्तविक स्थिति बनती है। क्या है, प्रणाम करना से हमें हमारा शुद्धिकरण होगा, और जब हम प्रणाम करें तो इस मंत्र पे ध्यान दें, वांछा कल्पत रूपेश कृपा सिंधु अतिता नाम कामने वैष्णव ये जो वैष्णव है ये कृपा के सागर है, ये कल्पतरु वृक्ष की तरह सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले और ये पतितों का उद्धार करने वाले। इस दिन से हम प्रार्थना करते हैं तो हम विनम्र होते हैं, हमें जरूर प्रणाम करना चाहिए। जितने ज्यादा हम प्रणाम करेंगे, आपको मालूम है रघुनाथ दास गोस्वामी जी कितने प्रणाम करते थे, 1000 प्रणाम करते थे वो गोवर्धन शिला को, और 2000 प्रणाम करते थे वैष्णव, 2000 प्रणाम गिनकर हम लोग को 2 प्रणाम भी नहीं करते थे। तो जब भी कोई भी वैष्णव दिखाई दे हमें तुरंत प्रणाम करना चाहिए। दंडवत केवल फोन पे बोल सकते हैं, फोन पे बोलते हैं गुरु जी, तभी दंडवत नहीं बोलना चाहिए, दंडवत गाली दे रहा हूं, दंडवत करो, दंडवत दंडवत प्रणाम करना चाहिए। फोन पे ही बात करें दंडवत प्रणाम करिए, सकते हैं बहुत सफल एटिकेट्स है। अच्छा फिजिकली मिले तो निश्चित रूप से हमें चुकना ही चाहिए, अगर बैक में पेन है डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है तभी अपनी लाचारी दिखानी चाहिए और कम से कम चुप के मंत्र तो जरूर बोल देना चाहिए। और ऐसी बिल्कुल कोई फिजिकल समस्या है व्यक्ति बहुत हो रहे हैं नहीं चुप सकते वो अलग बात है, लेकिन जो हमारा सबका शरीर स्वस्थ है उसको सेवा में रखना चाहिए। तो ये अपराध है, आते ही अपराध कर दिया हमने, उसके बाद दूर भी बात प्रणाम ने किया अपराध कर, तो प्रणाम करते हैं कई बार तो मंत्र नहीं बोलते, अच्छा सिर झुका लिया बोल के नहीं, और फिर कई लोग प्रणाम नहीं करेंगे पैर छुएंगे, और कभी पैर नहीं छुए वो पंजाबी साल में पैर बोना नहीं करते, बस यूं जैसे पता नहीं क्या यूं कर दिया बस ये कल्चर नहीं है, यूं कर दिया या फिर आके जमीन को छू दिया, अपने अपने स्टाइल है सबके। तो जब बताया गया क्या स्टाइल फॉलो कर रहे उसको फॉलो करें, अपने स्टाइल क्यों इन्वेंट करें, कोई यार खाली जमीन को छू लेता है, कोई किसी को छूता है, कोई घुटने को छूता है, कोई गांध छूता है, कोई प्रणाम नहीं है, कोई छूने की आवश्यकता नहीं है, बस चुपचाप ऐसे बैठ के वांछा कर सकते, बस सिंपल है, इससे आप भी प्रसन्न भगवान भी प्रसन्न सब। तो दूसरा ये अपराध नहीं करना हमने कि देखे प्रणाम ना करें, पहला क्या था कि देखे खुश ना हो, दूसरा कि प्रणाम ना करें, तीसरा मन में द्वेष रखें, खुश भी कर लिया दिखावटी हंसी भी हंस लिए प्रणाम भी कर लिए अंदर ही अंदर द्वेष रख लिया, सभी हम बचे। देख के खुश ना होना, प्रणाम ना करना और द्वेष करना, और चौथा निंदा करना, ये तीनों निंदा किए जा रहे हैं। ये ऐसे है किसी ने आगे बोला प्रभु जी बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं लोगों ने, बोला हाँ मालूम ना बन जाए डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा करते हैं लेकिन कुछ लगा दिया, मैं जानता हूं ना इनको, मैं इनको तत्व से जानता हूं, ये क्या है आप क्या जानते हो अपने नए नए आ रहे हो, मैं तो जानता हूं क्या है, कुछ ना कुछ अपनी कमेंट्री दे दी कि ये ऐसे तो निंदा कर दी। चौथा पांचवा की मारपीट शुरू कर दी, और छठा उनको जान से खत्म कर दिया, उनकी हत्या कर मारपीट कर दी उनके साथ, और छठा उनकी हत्या कर दी। तो इस तरह के 6 तरीके से रचना होता है, तो हम लोग मारपीट और हत्या तो नहीं करते, लेकिन पहले 4 तो हम बड़े अच्छे ढंग से करते हैं, पहले 4 में तो सबको मास्टरी है हमारे, कोई ना कोई हम करते जाए निरंतर नित्य है हमारे साथ। तो फिर हम परेशान होते हैं कि पूरी सोलामाला भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ रहा, कैसे आगे बढ़ रहा, क्योंकि हम ये लोग दर्शन प्राप्त कर रहे करके इन दर्शन पास हमें जरूर बचना चाहिए। देखिए इस्कॉन जो एक संस्था है ये कृष्ण से अभिन्न है, तो जैसे कृष्ण को लोग तरह तरह से जानते हैं, कोई बोलते उनसे बोलते कृष्ण बड़े कामुक पुरुष थे, 16,000 रानियां थी, गोपियों के बस चुरा लिए वगैरह वगैरह वगैरह, कोई बोलता है कृष्ण चोर थे माखन चुराते थे वगैरह वगैरह। तो जो असली जानते कृष्ण को जानते हैं बोलते हैं हाँ कृष्ण कितने भक्त वत्सल थे, कितनी लीलाएं थी, मधुर मधुर है ना, उसी ढंग से हम इस कौन में आएंगे तो हर तरह के व्यक्ति हमें मिल जाएंगे। तो ये एक हॉस्पिटल है, स्पिरिचुअल हॉस्पिटल, جہاں سب کا علاج چل رہا ہے تو آپ کو ہر طرح کی باتیں سننے ملیں گی. جس طرح کرشن ہماری ہر طرح کی اچھا پوری کرتے ہیں اس قوم میں ہماری ہر طرح کی اچھا پوری کرے گا. کئی لوگ کرشن کتھا میں روچی رکھتے ہیں کہ اس کرشن کو پالیٹیشین کے روپ میں دیکھتے ہیں, کیا مہابھارت کی لڑائی لڑی انہوں نے. کئی لوگ کرشن کے پاس جاتے ہیں کہ ان کو کچھ سیکسول فینٹیسیز دکھائی پڑتی ہیں. کئی لوگ کرشن کے پاس جاتے ہیں کہ ان کو ان کی بالیلاؤں میں آنند آتا ہے, ہنسی آتی ہے. تو الگ الگ طریقے سے لوگ کرشن کے کو اپروچ کرتے ہیں. اسی طرح اس قوم کو بھی لوگ الگ الگ طریقے سے اپروچ کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو پالیٹکس میں آنند آتا ہے تو ان کو اس میں پالیٹکس مل جائے گی. کچھ لوگ شدھ بھکتی ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو ان کو شدھ بھکتی مل جائے گی. تو جو آپ کی اچھا وہ پوری ہوگی. تو ہمیں یہاں پہ کوئی گروپس نہیں بنانے. یہ جو سوسائٹی ہے یہ پالیٹکس پر نہیں چل رہی, یہ سوسائٹی چل رہی ہے پیورٹی سے. پیورٹی از دا فورس. پالیٹکس سے کوئی سنستھا نہیں چل سکتی. یہ دیویہ آندولن ہے. شری پربھوپاد کہتے ہیں اس آندولن کو اس کون از مائی پرسنلی سپروائز بائی چیتنیہ مہاپربھو. پرسنلی سپروائز چیتنیہ مہاپربھو کے ویکتیگت سنرکشن میں یہ آندولن چل رہا ہے. تو یہاں پہ کرپیا کر کے ہم آتے ہیں تو بہت سے ہمیں ایسے بھکت دکھائی دیں گے جو کہ نندا کرنے میں ماسٹر. وہ کچھ بھی پکڑ کے آپ کو کونے میں لے جائیں گے اور بتانا شروع کر دیں گے آج کل یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اس وقت نے ایسا کر دیا, وہ کر دیا. تو اگر آپ کی پالیٹکس میں رچیے تو آپ ضرور کھڑے رہیے اور نندا سنیے اور اپنا ستیہ ناش کریے. دیکھتے ہیں بہت سے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کارن یہ بھی وہ سوچتے ہیں کہ مجھے سب معلوم, میں جانتا ہوں اندر کیا ہوتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے, سکھوں کے اندر کیا چلتا ہے, اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. مجھے معلوم ہے کیا ضرورت ہے ہمیں جانے کی کہ اندر کیا ہو رہا ہے. آپ کو جو بتایا جا رہا ہے وہ کریے. ہمیں نہیں مان سکتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. پالیٹکس میں رچی رکھتے ہیں تو پالیٹکس مل جائے گی. شدھ بھکتی میں رچی رکھتے ہیں تو شدھ بھکتی مل جائے گی. مشرت بھکتی میں رچی رکھتے ہیں کہ بھکتی بھی کرتے رہے, تھوڑا تھوڑا لابھ بھی ہوتا رہے, تھوڑا یہ بھی ہوتا رہے, وہ بھی مل جائے گا جیسے آپ کی اچھا کو پوری ہوگی. تو بھگوان انہیں طرح کے بھکتوں کے سمپرک میں آپ کو لاتے ہیں, ویسے ہی آپ کا گروپ بن جائے گا اور اسی دن سے ہم چلیں گے. تو ہمیں پریاس کرنا ہے کہ نہ تو ہم نندا کریں نہ ہی نندا سنیں, بالکل نہیں سنیں. یہ ہمارے جیون کا سدھانت ہونا چاہیے. ضروری رج گوپال کرشن گوسوامی مہاراج جی ہماری مایاپور میں لیکچر دے رہے تھے تو کسی بھکت نے ہم سے پرشن پوچھا کہ آپ کی سفلتا کا رہسیہ کیا ہے, آپ کی سفلتا کا رہسیہ کیا ہے. تو انہوں نے دو باتیں بولی, گڈ سادھنا اینڈ اوائڈنگ ویشنو پراپت. میں سادھنا اچھی کرتا ہوں اور ویشنو پراپت کا رہسیہ. تو یہ ہمیں کرنا ہے. تو اگر سمجھے کوئی وقت آپ کو ملا اور اس نے ویشنو کی نندا شروع کر دی, سوسائٹی کی نندا شروع کر دی, تو کیا کرنا ہے آپ کو, کیسے بچیں گے اس سے؟ پروٹیسٹ ہم کر نہیں پائیں گے. بہت سے سینئر بھی ہو سکتے ہیں, انفلوئنشل بھی ہو سکتے ہیں, ہے نا, مطلب کوئی پدوی بھی اپادھی بھی ہو سکتی ہے. تو ہم ہو سکتا ہے پروٹیسٹ نہ کر. تو بتایا گیا شاستر میں تین طریقے ہیں نندا سے بچنے کے لیے. کیا یا تو ہمارے اندر اتنی شکتی ہو ہم اس کو ہرا دیں, یہ اب غلط بول رہے ہیں. دوسرا ہم چپ چاپ وہاں سے. تیسرا جو کہ اب کرنا مت کہ اپنے شریر کو تیار ہو. میں ایسا ریکمینڈ نہیں کروں. سب سے اچھا طریقہ کہ دوسرا کہ چپ چاپ وہاں سے کچھ بنا کر کے اچھا کرو. یہ بھی آتا ہوں دیکھتا ہوں امید کر کے کچھ بھی کرتے ہوں. ایسے بچوں کا نقصان تو ہمارا اپنی جیون خطرے میں کرتا ہے. بس کہنے کو بہت کچھ ہے تو میں باقی چیزیں اسکپ کرتا ہوں. اور اب میں آپ کو کچھ اس قوم سنستھا کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ اس قوم کیا سنستھا ہے. دیکھیے جس سنستھا سے ہم لوگ جڑے ہیں یہ کوئی اٹس ناٹ اے میئر سوسائٹی. ہم نے سوسائٹی سے بہت ڈائمینشن ہے. طرح طرح کے لوگوں نے سوسائٹی میں ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے. کیونکہ وہ کوئی سنستھا نہیں ہے, یہ ایک پرمانک گرو ششیہ پرمپرا کا ایک سمپردائے ہے. تو کوئی بھی ہم وستو جب بولتے ہیں پرمانک تو ہمیں پوچھنا چاہیے کس نے پرمانک کیا ہے. یعنی کہ اگر اس کون واسطو میں پرمانک ہے تو اس کا ورنن کہاں ہونا چاہیے, شاستروں میں اور بیٹوں میں اس کا ورنن ہونا چاہیے. جس دن سے ہم چیتنیہ مہاپربھو کو بھگوان کہتے ہیں تو اس کا ورنن شاستروں میں ہے. इसी ढंग से इस कौन भी एक केवल संस्था नहीं है, एक दिव्य है, दिव्य आंदोलन है, तो इसका क्या प्रमाण है? क्या भावुकतावश आप ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आप इस कौन से हैं? तो इसका क्या प्रमाण? तो इसका प्रमाण बहुत से शास्त्रों में है, समय कम है, मैं केवल एक या दो आपको बताऊंगा। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में जैसे कि आपने सुना होगा, ब्रह्मवैवर्त पुराण के जन्म खंड में क्या वर्णन आता है, सुना हुआ वर्णन आपने, कि जब कलयुग शुरू होने वाला था तो गंगा मैया भगवान श्री कृष्ण के पास गई और उन्होंने कहा कि कलयुग के लोग बहुत पापी होंगे, जब पापी लोग मुझे स्नान करेंगे तो मैं गंदी हो जाऊंगी, तो मेरा उद्धार कौन करेगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये गंगे आप परेशान मत होइए, निश्चित रूप से आज से 5000 वर्षों के बाद कुछ ऐसे मेरे भक्त आएंगे जिनके ये गुण होंगे। क्या क्या गुण होंगे? कि ये जो भक्त होंगे मेरे नाम का जोर जोर से उच्चारण करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, ये पृथ्वी के कोने कोने से होंगे, अलग अलग स्थानों से होंगे, नंबर दो। और नंबर तीन, ये केवल मेरा उच्चिष्ट स्वीकार करेंगे, केवल प्रसाद पाएंगे। तो जब ऐसे भक्त जो कि हरि नाम लेते हैं और विष्णु के अलग अलग भागों से आएंगे और केवल प्रसाद पाएंगे, जब ऐसे भक्त आके तुम में स्नान करेंगे तो तुम्हारे सारे पापों को हर, तो ये बताया गया ब्रह्म नरक प्राण के जन्म खंड है। तो ऐसे भक्त कौन है? अलग अलग जगह से विष्णु के कोने कोने से भक्त आते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, स्वयं भगवान कृष्ण इसको स्थापित कर रहे हैं कि जो इस्कॉन का आंदोलन वो एक साधारण आंदोलन है। दूसरा, चैतन्य मंगल, चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि शीघ्र ही मेरा एक सेनापति आएगा जो मेरे संदेश को दूर दूर तक पहुंचाएगा। अगर पापी से पापी लोग कहीं चले गए हैं तो उनको पकड़ के धर्म का संदेश मिलता, तो सेनापति कौन है? तो हम लोग, आप ये बात गांठ मान लीजिए कि इस कौन में कोई भी बात बोली जाती है तो भावुकता से नहीं होता, इसके पीछे ठोस शास्त्रों का प्रमाण होता है, ठोस प्रमाण होता है। तो हम लोग ऐसी संस्था से जुड़ रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। प्रमाण होने के कोनो भाग्यवान जी, कोनो कृष्ण प्रसादे पर मुक्ति बता दी, कैसे प्रमाणिक गुरु की हम शरण में आ गए हैं, बस कुछ नहीं करना, चुपचाप इनकी आज्ञाओं का पालन करना है, भगवत धाम जाना हमारा सुनिश्चित है, सुनिश्चित, निश्चित नहीं सुनिश्चित। कितने ज्यादा, जैसे आज तो इलेक्शन हुए हैं, आध्यात्मिक जीवन में इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है, इलेक्शन नहीं है सिलेक्शन है। तो आप सब लोगों को सेलेक्ट किया गया है, गुरु महाराज आप सब लोगों को सेलेक्ट करेंगे, आप से कुछ लोगों को हो सकता है कि थोड़ा वेट भी कर रहे हैं, तो हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु श्री प्रभुपाद ने सेलेक्ट किया है। चलो भगवत धाम प्रोसेस शुरू करो, तो इतनी बड़ी हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई है, इसको हम रिजेक्ट ना करें। रिजेक्ट करने का अर्थ है कि इसको हम वास्तविक रूप से अपने जीवन में उतारे। जैसे कल बताया जा रहा था, दीक्षा एक केवल यज्ञ के बड़ी फॉर्मेलिटी नहीं है, दीक्षा एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ सरेंडरिंग। आपको शरणागत शुरू करना पड़ेगा, शरणागत की शुरुआत, ये हमें बारे में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। उसके बाद हमें मालूम होना चाहिए कि इस कौन की सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन क्या है। श्री प्रभुपाद जी ने अपने जीवन काल में इस कौन के प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए जीपीसी की संरचना की, गवर्निंग बॉडी का। इस कौन का जो अभी मैनेजमेंट चलता है, कोई वन मैन शो नहीं, पूरी बॉडी है, कमीशन है, जीपीसी गवर्निंग बॉडी कमीशन, अपने जीवन काल में प्रभुपाद जी ने स्थापित कर। और प्रभुपाद ने कहा था कि जीपीसी इज माई माउथ पीस, कि जीपीसी मेरा मुख है। तो अब जितने भी निर्णय होते हैं समय परिस्थिति और काल के अनुसार, अपने शासनों के आदेशों को किस ढंग से पालन करना है, तो जीपीसी की तरह हमें ऑर्डर्स मिलते हैं। समझिए, किसी भी बात में हमें कुछ भी निर्णय लेना है पॉलिसीज में, तो जीपीसी डिसाइड करती है। तो जीबीसी के बाद हर साल मायापुर में फेस्टिवल से पहले साल में मीटिंग होती है जीबीसी की। इसमें अलग अलग क्षेत्र के लिए गवर्निंग बॉडी कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं, कि अलग अलग जो भक्त हैं वो अलग अलग क्षेत्रों को संभालते हैं। फिर उन क्षेत्रों से के नीचे हर एक जीबीसी के नीचे एक जोनल काउंसिल होता है, या तो जोनल काउंसिल होता है या जोनल सेक्रेटरी होता है, जो कि जैसे नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन वेस्ट जोन इनके काउंसिल बना दिया जाता है। फिर उस जोन के अंदर टेम्पल आता है, फिर टेम्पल में टेम्पल प्रेसिडेंट, टेम्पल प्रेसिडेंट प्रेयर टेम्पल कमांडर इस तरह से मैनेजमेंट करता है। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि टेम्पल प्रेसिडेंट्स आर लाइक माय डॉग्स। कहते हैं इफ यू वॉन्ट टू लव मी लव माई डॉग्स। आप किसी व्यक्ति के घर में जाते हो और उसके कुत्ते से प्रेम करना शुरू कर दो, व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है, उस कुत्ते को गुणगान करना शुरू करना कि ऐसा है ऐसा है। लेकिन हम प्रभुपाद से प्रेम करना चाहते हैं तो हमें प्रभुपाद के जो कैटेगरी हैं, प्रभुपाद डॉग्स टेम्पल प्रेसिडेंट्स हैं, उनसे हमें उनकी आज्ञा का पालन प्रयास करना चाहिए, तभी हम प्रभुपाद को प्रसन्न कर पाएंगे। ठीक है, ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा। इसके बाद समय कम है तो अब हमें जानना चाहिए कि भगवत महाराज जी से दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उनके विषय में हमें कुछ ज्ञान होना चाहिए। तो भगवत महाराज जी का आविर्भाव हुआ था सन 1944 में अन्नदा एकादशी के तहत। कहाँ हुआ था? दिल्ली में, है ना। तो महाराज जी ने इसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट किया सॉर्बोन यूनिवर्सिटी पेरिस से। उसके बाद उन्होंने मास्टर्स डिग्री ली टाटा मैकल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल से। और फिर उनकी प्रभुपाद से मुलाकात कहां पे हुई? है कनाडा में। वो हुई थी 1 जून 1968। तुम्हारा बताते हैं कि वो सेवा में थी, प्रभुपाद जी आने वाले थे तो वहां के टेम्पल प्रेसिडेंट ने बोला था कि प्रभुपाद का रूम साफ करो। डायरेक्ट सेवा महाराज को ही मिलेंगे। महाराज ने प्रभुपाद का रूम बहुत अच्छे ढंग से साफ किया, प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए। प्रभुपाद के संपर्क आने के बाद महाराज जी ने तुरंत सोच लिया 2 हफ्ते में कि ये मेरे गुरु महाराज हैं। तो उनके जीवन में इतना परिवर्तन आया कि 1969-22 मई को उनकी दीक्षा हुई और 1975 में महाराज जी को GBC बनाया गया, जूनिंग बॉडी कमीशन। 1969 में महाराज जी की दीक्षा हुई 1969, और 1975 में महाराज जी GBC बने, जूनिंग बॉडी कमीशन बने, और 1982 में गुरु महाराज जी ने संन्यास ग्रहण किया। आप सब गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र याद, नमो विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी के नाम में प्रभुपादस्य साहित्य क्रिया प्रकाश प्रचारम विद्वान साधु भगवत पादाय के नमः। क्या कर रहे हैं? कृष्ण कृष्णाय भूतले प्रभुपादस्य साहित्य क्रिया प्रकाश तो क्या सेवा दी गई? प्रभुपाद जी के साहित्य का प्रकाशन और वितरण। देखिए जो कि प्रभुपाद जी की सबसे प्रिय सेवा है, सबसे प्रिय सेवा प्रभुपाद कहते हैं कि यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, सबसे प्रिय सेवा वो गुरु महाराज को। तो महाराज जी का एक मूल रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा को डिस्ट्रीब्यूशन करें, ज्यादा से ज्यादा। जैसे आपको मालूम है कि इस साल पूरी दिल्ली में कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ भगवदगीता का? 3 लाख भगवदगीता का। और महाराज जी कह रहे हैं कि आने वाले दिसंबर के महीने में हमने कम से कम 4.5 लाख डिस्ट्रीब्यूशन करना। ये सब कौन करेगा? महाराज जी, महाराज जी की कृपा से हम करेंगे। ये जानना नहीं है कि महाराज जी करेंगे, हम बैठे हैं मतलब हम लोगों को करना है महाराज जी की कृपा से। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट सेवा है कि प्रणाम मंत्र में प्रभुपाद साहित्यम या प्रकाश वित्तीय उनका प्रकाशन और वितरण। तो हम लोग ये सेवा करते हैं, महाराज जी को बुक डिस्ट्रीब्यूटर बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो ये कहते हैं गुरु जी के साथ प्रेम का संबंध कैसे स्थापित करें, कि गुरु महाराज की सेवा उनको प्रिय सेवा भगवान जैसा गुरु महाराज जी का प्रेम जुड़ रखा। अब महाराज जी की अपने शिष्यों से आज अपने तरह तरह के लेक्चर्स में कई तरह के लेक्चर बता चुके हैं, उसको मैंने 2-3 इंस्ट्रक्शन जो कि प्रोमिनेंट रहती है हर एक ग्रस्त के लिए वो मैंने बताने का आपको प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले गुरु महाराज जी ये चाहते हैं कि उनके शिष्य के घरों में कौन तरह की स्थापना होनी चाहिए। आप ऐसे कितने लोग कई घरों में कौन तरह चाहिए हैं? तो बाकी भक्त लोग भी कर सकते हैं कि अपने आप ना करें, जो जिन वैष्णवों के संरक्षण में है उनसे पूछकर हम अपने आप को इस योग्य करें घर में ऐसा वातावरण बनाए कि हम जल्दी से जल्दी गौर निकाय जी की स्थापना कर सकें, तभी हम असली ग्रस्त कहलाएंगे। जब तक घर में विग्रह नहीं है हम ग्रस्त सही ढंग से बन नहीं पाए, तो घर में गौर निकाय की स्थापना होनी चाहिए। और महाराज जी चाहते हैं कम से कम हफ्ते में एक बार, कम से कम हफ्ते में एक बार प्रत्येक ग्रस्त को मंदिर में आके मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। मॉर्निंग प्रोग्राम आप सब जानते हैं, हाँ मॉर्निंग प्रोग्राम है सुबह 4:30 से लेके सुबह 9 बजे तक। मंगल आरती यहीं बैठ के हम जप करें, गुरु पूजा करें और फिर भागवत क्लास करें। कम से कम हफ्ते में एक दिन हम ऐसा जरूर करें, कम से कम। और तीसरा महाराज चाहते हैं कि जो मंदिर का फेस्टिवल कार्यक्रम हो, यहाँ पे कब होता है फेस्टिवल कार्यक्रम, सैटरडे इवनिंग, तो उस फेस्टिवल कार्यक्रम में हमें निश्चित रूप से आना है, नॉट एज अ गेस्ट बट एज अ होस्ट। इन फेस्टिवल कार्यक्रम में आकर हमें कुछ सेवा करनी चाहिए, गेस्ट की तरह नहीं आना चाहिए, क्योंकि मंदिर आपका ही तो है। दीक्षा हो गई, संपर्क स्थापित हो गया, अब हमें ये नहीं करना कि इस कॉल में ऐसा होता है, इस कॉल में ऐसा नहीं है, हमारा ही हमारा मंदिर है, हम बाहर वाले नहीं रहे, इस परिवार के सदस्य हो गए, परमानेंट मेंबर्स, तो ये हमारा मंदिर है। मिश्रण कम एज ए गेस्ट की अतिथियों की तरह आ रहे हैं, अभी भी आगे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगा, सेवा देने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके गेस्ट की तरह ना आके होस्ट की तरह। क्लियर है ना सर, क्लियर है? क्या क्या है महाराज की तीन इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से बताइए? कौन बताएगी स्थापना प्रोग्राम और सैटरडे फेस्टिवल्स में होस्ट की तरह, और चौथा जो महाराज हमेशा दीक्षा के समय भी आपको बोलेंगे कि प्रतिदिन प्रभुपाद के शास्त्रों का अध्ययन करना ही करना, शास्त्रों का अध्ययन करते रहेंगे तो हम हमेशा अपने मार्ग पर अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे, अन्यथा हम अटक जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको सोच रहे हैं, जो विग्रह हैं वो भगवान है, भगवान की मूर्ति नहीं, वो भगवान है, तो दर्शन का उनका बंद होते हैं। तो भोग लग रहा है या भगवान विश्राम कर रहे हैं या श्रृंगार चल रहे हैं, इन तीन स्थितियों में बंद होते हैं। अब भगवान भोग खा रहे हैं तो आप प्रणाम कर रहे हो तो भगवान डिस्टर्ब हो, भगवान विश्राम कर रहे हैं आप उनको प्रणाम कर रहे हो, क्योंकि भगवान के तर्क कर्म नहीं है, आप ही को प्रणाम कर रहे हो तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा कुछ, भगवान भी ग्रेटफुल होते हैं तो ये भक्त भी प्रणाम कर रहे हैं, भगवान देखते हैं। तो इसलिए हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए, ऐसे करके आगे बढ़ सकते हैं इसी ढंग से। हाँ तो हरे कृष्णा, ऐसे बिल्कुल इग्नोर भी नहीं करना कि भगवान के सामने जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम प्रणाम करते हैं तो मंत्र का उच्चारण भी करते हैं, प्रणाम करी चुपचाप नहीं करते, मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो भगवान सो रहे हैं वो डिस्टर्ब है। इसी ढंग से भगवान की आरती चल रही है, जैसे हम बड़े मंदिर में जाते रहा बड़े मंदिर में, तो आरती चल रही है तो आरती के समय हम परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको व्यक्ति के रूप में देखना है, जब उनकी आरती हो रही है तो हम उनकी आरती देख रहे हैं, हमारी आरती हो रही है तो चक्कर काटना शुरू कर रहे हैं तो इरिटेट हो गए क्या, एक एक टाइम पे एक काम करो, आरती समाप्त होने उसकी बात करना पड़ेगा। भगवान को प्रणाम सिद्ध करते समय पहले हमें गुरु महाराज का मंत्र बोलना पड़ेगा, फिर प्रभुपाद जी का प्रणाम करना पड़ेगा, फिर हमें देखें आल्टर में गुरु परंपरा है तो उन सब गुरु परंपरा के हम जय बोल सकते हैं, उसके बाद स्वामिकाई जी है स्वामिकाई का प्रणाम करना है, उसके बाद राधिका रमन जी का प्रणाम करना सकते हैं, जगन्नाथ मंदिर सुभद्रा महाराज जी का प्रणाम करते हैं आप उसको बोल सकते हैं, बाद में श्री कृष्ण जगन्नाथ पंचतत्व मंत्र मांगे हरे कृष्ण। सीनियर वैष्णव के साथ हैं और उसने कोई इंस्ट्रक्शन दी और आपको प्रैक्टिकल नहीं करते तो पूरा अधिकार मिलता है हमारा, हमसे पूरा पूछ सकते हैं और उसको पालन करने का प्रयास करें, नहीं हो रहा तो वापस उनके पास जा सकते हैं, प्रभु जी ऐसा ऐसा मैंने प्रयास किया, ये मुश्किलें आ रही हैं, जो सीनियर वैष्णव भी हैं तो कोई ऐसे डिक्टेटर नहीं है ना, जब गुरु हैं वो हमारे मित्र हैं, उससे मित्र की बात क्या चाहती है कि मुझे इसमें मुश्किलें लग रही तो सीनियर वैष्णव दोबारा सोच सकते हैं इसके बारे में, रिवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको प्रयास करना चाहिए, शुरू से इसको काटना नहीं चाहिए कि संभव ही नहीं है तो गलत बोल रहे हैं हो ही नहीं सकता है प्रैक्टिकल नहीं, ऐसा नहीं प्रयास करना चाहिए, खुले दिमाग से रहना चाहिए, हो भी सकते हैं प्रयास तो करूं और जो मुश्किलें आए तो उससे दोबारा चर्चा करें। एक बड़ी हम ऐसे कर सकते हैं भगवान पा रहे हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं, गीता में कह रहे हैं कि जो औषधियों का रस वस्तु में ही हूँ, भगवान की कृपा से हम ठीक होते हैं। तो कुछ लोग करते हैं कि इतना आवश्यक नहीं है, इस पर तुलसी रखने ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। हम भगवान को कह सकते हैं कि मैं दवाई ले रहा हूँ, अपने शरीर के स्वास्थ्य में रहने का आगे अच्छी वापस ऐसे हम उसको मेहनत हो सकते नींद और को देना प्लेट तुलसी डाल के मंत्र जगह अच्छा करके कैसे जब अर्ज वगैरह के दर्शन खुले हों तो फिर किसी वैष्णव को प्रणाम नहीं करना, नहीं
करना
भगवान के साथ। बहुत से लोग कर देते हैं, और गुरु महाराज जी ने एक बार मौना बहुत बता रहे थे कि दादावासी मंदिर में माइक में आगे अनाउंसमेंट किया कि ऐसा मत करें, इससे मुझे भी अपराध रहेगा, आपको भी अपराध रहेगा, सेवा अपराध रहेगा। जैसे ही मौका मिले गुरु महाराज लिखने से थोड़ी दूर हो तो हम तुरंत कर, और आपस में वैष्णव मिले तो नहीं करना चाहिए, भगवान के सामने क्या होगा। जैसे हम आए हैं तो राम दरबारी के सामने आए तो सीता राम के सामने रुक जाए, थोड़े रुक के उनका गुणगान करके जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी, फिर आगे बढ़े जय राम भगवान जी जय। देखा सुप्रीम पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट ही होता है, सुप्रीम पर्सनैलिटी को हम ऐसे इग्नोर करके नहीं जा सकते, ऑटोमेटिकली बड़ा बड़ा भाग के कल में देख ही नहीं रहे होंगे, किसकी परिमा कम कर रहे उनके गुणगान के लिए गुणगान करते हैं। वो कब कब प्रणाम नहीं करता जब वो प्रसाद पा रहे हो, क्योंकि प्रसाद और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, अगर तब प्रणाम नहीं करना चाहिए या भी थोड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन नहीं होगा वैष्णवी वैष्णव का समझ बीमार है, उनका पेट खराब हो गया, वो क्वारंटाइन भागे तो ही वंशा कर आप देख सकते हैं, या फिर इमरजेंसी में है आप भाव से देख सकते हैं कि बहुत इमरजेंसी में भाग के कहीं जा रहे हैं, इसमें उनको रोक के उनको प्रणाम कर दे तो उनको देखेंगे वो कि कंफर्टेबल उनको बहुत ज्यादा से अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ना हो और प्रसाद पा रहे हैं, अन्यथा हर स्थिति में उनको प्रणाम कर प्रसाद सामने कर देने का हाँ हाथ में के शास्त्र तो अध्ययन कर रहे हो तब भी नहीं। देखिए माला करते हो तब भी हमें कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्या होगा अगर इतने ज्यादा बोलेंगे तो हमारे पास बहुत से लॉजिक हो जाएंगे, कभी तो माला कर रहे थे कभी तो भगवत गीता पढ़ रहे थे तो मुझे कंफर्टेबल नहीं थी इसलिए मैंने प्रणाम नहीं
किया।
प्रणाम करते थे सामने आ गए, आपको हैरानी होगी कि 90% से ज्यादा लोग तो 16 शब्द बोलते ही नहीं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कुछ नहीं, 16 माला ये बस चलता रहता है। बहुत बड़ा एक एक शब्द को ध्यान से बोलना है, ध्यान से सुनना है, यही तो आधार है ना। हम जंगल में जाके तपस्या कर रहे हैं ना, कोई सांसों को रोककर प्राणायाम कर रहे हैं, इतने मुश्किल मुश्किल कार्य करने हैं। एक गुरु जी ने मंत्र दिया 16 शब्द बोल लो, उसको ठीक ढंग से बोल दे। हम लोग क्या करते हैं, ओहो ऑफिस जाना है, अब बचे 1.5 घंटा, 16 बार निपटा देता हूं किसी जाने, फास्ट स्पीड पे फास्ट फॉरवर्ड, एक मन का छोड़ दिया, दो मन का छोड़ दिया, 4.5 मिनट में माला हो गई, 5 मिनट में माला हो गई, बस हो गया। यहाँ पे 16 शब्द हो गया, 12 मन शब्द बोल दिए, 13 बोल दिए, 14 बोले, जितने बोले सब ठीक है, सोचने के क्या बोल रहे। तो ये इस ढंग से किसको हम धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो प्लीज एक एक शब्द साफ साफ बोलना है और साफ साफ सुनना है, इतना ही करने बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो लीलाओं में प्रवेश करना, भाव में आना, रोना चिल्लाना, वो सब दूर की बात है, इतना ही कर ले बस कि 16 शब्दों को बोल ले और सुन ले, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं बहुत तीव्रता से शुद्धिकरण होगा, बहुत तीव्रता से भक्ति में प्रगति कर, ये नहीं करते हम, इतनी छोटी सी मिनिमम बात ही नहीं कर पाते। 2 घंटे तो हमें लगने चाहिए माला में, कम से कम 7.5 से 8 मिनट के बीच लगना चाहिए। अगर किसी को 7 मिनट से कम लग रहे हैं तो उसको निश्चित रूप से अपना जग को चेक करवाना चाहिए। जग का चेक तो हर अवस्था में करा ही लेना चाहिए। कैसे चेक कराएंगे जग को, रिकॉर्डिंग करिए और खुद मत सुनिए, किसी वरिष्ठ भक्त को सुनवाइए। खुद तो हमें आदत पड़ गई, वो गलत मंत्र सुन देगी, उसको ठीक कर लो कर देंगे, वरिष्ठ भक्त में ऐसा ही होता है। इतना बड़ा काम कर दिया, हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, 3 घंटे बैठ गए, क्या क्या हो सकता है, प्लीज ऐसा सोचिए। चाहे कैसे भी हो रही है, ऐसी माला पे करना है, मतलब कि ये नहीं समझना अच्छे ढंग से नहीं, फायदा क्या, मन में लग रहे आप करते रहते, प्रयास कीजिए अच्छे ढंग से करने का, नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं करते। जैसे हमने महाराज जी को देखा, हमने तुरंत प्रणाम कर देना चाहिए, प्रणाम करते हुए हमें उनका प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, है ना, उसके बाद महाराज दिखे तब भी कर। दर्शन हमें यह करना चाहिए भगवान के चरणों से, मतलब प्रभुपाद जी हैं, गुरु परंपरा है, देखिए अगर समझिए गुरु महाराज सामने बैठे हैं व्यास आसन पर बैठे हैं, तब तो हमें आपस में प्रणाम नहीं करना चाहिए, तब तो हमें व्यास आसन बैठना सीखना चाहिए। गुरु महाराज खड़े हैं कुछ बोल रहे हैं, जैसे गुरु महाराज आपसे बातचीत कर रहे हैं तो कोई वक्त आके आपको प्रणाम ना करें, और गुरु महाराज कहीं और किसी और सेवा में संलग्न है तो फिर हम आपस में जरूर प्रणाम कर सकते हैं।
बोलते हैं, कुर्सी आरती बोलते हैं, बोलने से आरती करके फिर
اپلیکیشن معاف کر سکتے ہیں. کسی کی کوئی مشکلیں ہیں تو ویکتیگت استھتی کو میں ایڈجسٹمنٹس کی جا سکتی ہیں, ون ٹو ون کوشچن میں بتا سکتے ہیں, لیکن بیک کیلکولیشن کر لینی چاہیے کہ کتنی مجھے میکسیمم مالا کر کے جاؤں, 20 منٹ آدھا گھنٹہ کر کے جاؤں اور اس کے بعد میں اس کے بعد میں جاؤں, تب کچھ آپ کو لگے گا کہ ہاں جیون میں کچھ پریورتن ہو رہا ہے. لیکن ایسے ہی ہم چلے گئے اور کچھ بھی کہیں بھی مالا کر لی, کہیں بھی کچھ کر لیا, تو پھر وہ سب ہم سارے نہیں, ایسا کچھ نہ کوئی سخت نہیں ہے,
Thank you.